अब आप कहेंगे अच्छा बच्चे तो ठीक हैं, तो शौहर, तो आइए शौहर का भी सुन लीजिए। उम्मे सुलैम का शौहर को दावत इस्लाम देना। हज़रत उम्मे सुलैम ने अपने शौहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़ुद इस्लाम कबूल करने और अपने बच्चे को कलमे शहादत की तलकीन करने पर इक्तफा ना किया, बल्कि अपने खामन को भी मुसलमान होने की दावत दी। यानी बाज़ लोग कहते हैं जी अपने काम से काम रखो, तो मेरी फ़िक्र ना करो। और हमारे कल्चर में तो बड़ी बुरी मिसाल देते हैं, लो आप बीवी है, टीचर बन रही है, उसकी उस्ताद बन रही है, ये उसको समझा रही है, कहते हैं ना। आप यहाँ देखिएगा कि वो शौहर को भी बात कह रही हैं। इससे क्या पता चलता है कि खैर की बात कहने में शौहर को भी कह सकती है औरत। इससे कोई स्टेटस में फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत बहुत डोमिनेंट हो गई है, बात अच्छी होनी चाहिए जो भी कर ले। ये वाक्य हम पढ़ते हैं तफसील से। वो ज़माने जाहिलियत में अनस के वालिद मालिक बिन नज़र के अक़्दे ज़ौजियत में थी, यानी उनकी बीवी थी। इसी से इनके यहाँ अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। जब अल्लाह ताला इस्लाम को लाया तो वो अपनी कौम के हमराह मुसलमान हो गईं और अपने शौहर को भी कबूल इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो नाराज़ होकर सरज़मीन शाम की तरफ निकल गया और वहीं हलाक हो गया। इस वाक़े से फ़ायदा उठाने वाली बातें, पहली बात क्या कि मुसलमान औरत का एहतसाब सिर्फ इसका शौहर ही नहीं करता, बल्कि वो भी बवक्त ज़रूरत अपने शौहर का एहतसाब करती है। खामत का अदब और एहतराम इसके एहतसाब की राह में रुकावट नहीं होता। तो क्या पता चले, ये है असल में इक्वलिटी, म्यूचुअलिटी है। बीवी में कोई गलती हो तो शौहर पॉइंट आउट करे, शौहर में कोई खूबी हो तो बीवी उसका तذکرہ करे। तो इस रिश्ते में ये नहीं आप कह सकते कि औरत है तो पाँव की जूती है, तो दबी रहे और बोले ना और बात ना करे, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि बाज़ औक़ात एहतसाब के सबब मुख्तसिब को मुख्तसब अलैह के गैज़ो गज़ब और नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए ये आराब लगाएंगे ना, मुख्तसिब हिसाब लेने वाला। इस वाक़े में मुख्तसिबा कौन थी? हज़रत उम्मे सुलैम। तो मुख्तसब अलैह वो सब होगा क्योंकि मफूल होगा जिसका हिसाब किया जाए। आसान लफ्ज़ों में लिख लें तो पता क्या चला कि बाज़ औक़ात दूसरों को नेकी की बात कहते हुए कहने वाले को उसकी नाराज़गी मोल लेनी पड़ती है जिसको कहा जा रहा है। यही है इस सारे लफ्ज़ों के खुलासा। तो फिर शौहर नाराज़ हुए ना, तो फिर ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, अब तो जहन्नुम में जाएंगी, क्योंकि शौहर की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है। बस दफ़ा हमारे कल्चर में ऐसी ऐसी हदीसें आम कर दी गई हैं कि औरतें गिल्ट में चली गई। ये देखिए जी यहाँ लिखा हुआ है कि आपके शौहर जो बात कहें आप माने तो आप जन्नत में जाएंगी, तो फिर हमारे शौहर तो कहते हैं प्लकिंग करो और हमारे शौहर कहते हैं बेपर्दगी करो। तो मैं इसका एक छोटा सा जुमला बोल देती होती हूँ जिससे लोगों को मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि उस शौहर की बात मानने से अल्लाह खुश होगा जिससे अल्लाह भी खुश हो। जिस शौहर से अल्लाह ही खुश नहीं है, यह शौहर जो काम कह रहे हैं उस काम से अल्लाह खुश नहीं है, तो आप उसकी बात मान के जन्नत में जाएंगी? ये तो एक अजीब सी बात है ना। हाँ अच्छा शौहर है, सही बात करता है, तो फिर उसकी बात मानने में तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत ही सहूलत है और जन्नत की खुशखबरी है। फिर इसमें तीसरी बात क्या पता चली कि सच्चे मुसलमान मुख्तसब अलैह की नाराज़गी के बावजूद हक बात पर डटे रहते हैं और इसी बात की दूसरों को तलकीन करते हैं। हमारा क्या होता है, शुरू करते हैं बात, ज़रा सा देखते हैं रिएक्शन हो रहा है, चुप चुप चुप, अब नहीं बोलना, ऐसी लड़ाई हो जाएगी, नाराज़गी होगी। लड़ाई तो करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए शौहर नाराज़ होकर चले गए। हम कहते वो खुद शौहर नाराज़ हो गए, ये हो गया वो गया, और वो वहाँ फौत भी हो गए। लेकिन आगे आप देखेंगे अल्लाह ने उनको कितना प्यारा इसका बदला अबू तलहा की सूरत में दिया। तो याद रखिए कि ऐसे नहीं घर टूटते कि किसी ने किसी को कहा नमाज़ पढ़ो तो तलाक दे दूंगा, किसी ने कहा कि मैं अगर पर्दा करूंगी ना तो मेरे शौहर दूसरी शादी कर लेंगे, तो मैंने कहा जिसने करनी है उसने वैसे ही करनी है। आपका ख्याल है सारी पर्दा की हुई ख्वातीन के शौहरों ने दूसरी शादियाँ कर ली हैं, या जिन जिनों के अफेयर्स चल रहे हैं दूसरी जगहों पर क्या उनकी बीवियाँ पर्देदार हैं? ये सिर्फ़ एक धोखा होता है, ये अपने दिल का चोर होता है, वरना बात ऐसी नहीं है। तो डट जाइए, यही तो बात है। वतवासो बिलहक़ की वतवासो बेसब्र, जमने का नाम ही असल में दीन है। रिएक्शन को बर्दाश्त करके इंसान आगे चल पड़े। शौहर की नाराज़गी के बावजूद उम्मे सुलैम अपने इस्लाम, बच्चे को कलमे शहादत की तलकीन और शौहर को दावत इस्लाम देने के मौक़ पर जमी रही और उनके पाए, पाए कहते हैं पाँव को, पाए इस्तकलाल यानी साबित कदमी या उनके कदमों का जमना, इसमें कोई कमज़ोरी नहीं आई। तो पहला वाक्य क्या था बच्चों से मुतल्लिक, दूसरा क्या निकला शौहर के लिए। अब तीसरा देखिए, इन्हीं उम्मे सुलैम की पूरी कहानी आपको इन वाक़यात में मिल रही है कि उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा का अपने मंगेतर को तरके शिर्क का हुक्म देना। अब सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ के कोई अच्छा मंगेतर, अच्छा फियोंसी, अच्छा फिर उसको अगर बुराई से रोकना है फिर उसे मिलना तो पड़ेगा, फिर होटल में बैठ के अच्छे माहौल में तो उसको बुराई से रोकेंगे ना। यानी बाज़ दफ़ा हम बुरे तरीके से बुराई को रोकते हैं तो वो तो ऐसी है कि जैसे आपके टेबल पे धब्बा पड़ जाए तो आप गंदे कपड़े से आके उसको साफ़ करें, तो पहले तो वो इतना सा था वो और गंदा हो गया। याद रखिए बुराई को मिटाना है तो साफ़ तरीके से, अच्छे तरीके से मिटाएंगे, लेकिन अब वो जो शौहर अनस के बाप जो थे फौत हो गए, अब एक और रिश्ता इनके पास आता है। अब ये उसका क्या मामला करती हैं इसको पढ़िएगा। हज़रत उम्मे सुलैम के शौहर मालिक बिन नज़र की वफ़ात के कुछ अरसा बाद अबू तलहा इनके साथ निकाह का पैगाम लाए। हज़रत उम्मे सुलैम ने इन्हें शिर्क तर्क करने का हुक्म दिया और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इसकी दलील इमाम बिन साद ने हज़रत अनस से रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया, अबू तलहा उम्मे सुलैम के साथ निकाह करने की फरमाइश लेकर आए। उन्होंने जवाब में फरमाया, मेरे लिए एक मुशरिक के साथ शादी करना दुरुस्त नहीं है, यानी अबू तलहा अभी तक इस्लाम पे नहीं थे। ए अबू तलहा, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं कि जिन माबूदों की आप परस्तिश कर रहे हो इन्हें फलां कबीले के बढ़ई गुलाम ने छील कर बनाया है? लकड़ियों के होते थे ना, तो लकड़ी छीली और उसको घड़ के बना लिया, तो बनाने वाला ज़्यादा अच्छा है ना उस बुत की निस्बत, और अगर इनमें आग लगाओ तो वो जलकर राख हो जाए। रावी ने बयान किया कि वह अबू तलहा इनके हाथ से चले गए, लेकिन बात इनके दिल में उतर चुकी थी। रावी ने बयान किया कि इसके बाद जब भी वो उम्मे सुलैम के यहाँ आते तो वो यही बात इनके सामने दोहराती। एक दूसरी रिवायत में कि उन्होंने कहा कि या अबू तलहा, ए अबू तलहा, क्या तुम जानते नहीं हो कि जिस माबूद की तुम पूजा करते हो वो तो ज़मीन में उगने वाला एक दरख्त है, और इसको फलां कबीले के हबशी ग़ुलाम ने खराशा तराशा है? उन्होंने जवाब में कहा, क्यों नहीं, यानी मैं इस बात को जानता हूँ। उन्होंने, यानी उम्मे सुलैम ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक लकड़ी के टुकड़े के सामने सजदा रेस होते हो जो ज़मीन में उगती है, और यकीनन फलां कबीले के हबशी ग़ुलाम ने छील छाल कर इसको बनाया। उन्होंने मज़ीद कहा, क्या इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और अगर आप ऐसे कर लो तो मैं आपके साथ शादी के लिए तैयार हूँ, और इसके अलावा आपसे किसी और चीज़ को बतौर हक महर नहीं जानती। अबू तलहा ने इनसे कहा, मुझे मोहलत दीजिए कि मैं गौर करूँ। उम्मे सुलैम ने बयान किया कि वो चले गए और गौर व फिक्र किया, फिर वापस आकर कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी वो मुसलमान हो गए। और निसाई की रिवायत में क्या है, इससे थोड़े से अल्फाज फ़र्क है, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम आप ऐसे को ठुकराया नहीं जाता, यानी अबू तलहा बहुत अच्छे अमीर सहाबी थे, तो उम्मे सुलैम कह रही हैं ऐसा रिश्ता कोई हाथ से जाने नहीं देता, इसको हाईलाइट कीजिएगा, लेकिन आप काफिर हैं और मैं मुसलमान हूँ, और मेरे लिए ये जायज़ नहीं कि आपसे शादी करूँ। अगर आप मुसलमान हो जाएं तो यही मेरा हक के महर है, मैं इसके अलावा किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगी। साबित ने फरमाया, मैंने अभी तक किसी औरत के मुतलक नहीं सुना जिसका हक के महर उम्मे सुलैम के हक के महर से ज़्यादा बावक्कार हो। इनका हक के महर अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो का इस्लाम था, इन दोनों की शादी हुई और इनके यहाँ औलाद हुई। अब आप देखिए इस किस्से में कितनी हमारे फ़ायदे की बातें हैं। लोग कहते हैं फिल्में देखो, ड्रामे देखो, उसमें से बहुत सारी वाक्यात और नसीहतें मिलती हैं, लेकिन इस सच्चे वाक्य में देखिए, पहली बात क्या है, उम्मे सुलैम का मुसलमान होने पर फ़ख्र और एतज़ाज़ करना, यानी अपने लिए एज़ाज़ की ये बात समझ रही हैं कि मैं मुसलमान हूँ, जिसको इंग्लिश में आप कह लें कि आई एम सॉरी टू बी अ मुस्लिम वाला एटीट्यूड नहीं था उनका, वो खुश थी कि मैं मुसलमान हूँ। और याद रखे, दूसरे को वही बुलाएगा जिसको खुद यकीन होगा। रस्सी खींच रहे हैं दो सिरों में डाल के, तो आपका अपना हाथ पक्का होगा तो दूसरा भी आपकी तरफ खींचेगा ना, और आप खुद ही शेकी हैं तो आप खुद भी उसके जाके पास गिरेंगे। हमें खुद नहीं यकीन, असल में सच्ची जो बात है, हमें अपने दीन का खुद ही नहीं यकीन होता। जो बात कहने लगी हूँ, जो पूछने लगी हूँ, जो इजाज़त लेने लगी हूँ, जो कहने लगी हूँ, मुझे खुद ही नहीं यकीन कि ये बात अहम है, तो फिर मुझे कौन इजाज़त देगा, फिर मुझे उस बात के लिए कौन तैयार करेगा, मेरी बात पे दूसरे कहाँ आएंगे। बस आप देखिए ना, मैं आपको सूद की आयतें पढ़ाऊँ और मेरे को, हाँ सूद है तो हराम मगर आज के दौर में, हाँ वैसे बड़ा मुश्किल है, हाँ लोग बच नहीं पाते, अब मेरी इस टोन से क्या आप सूद हराम समझेंगी? हलवा बन जाएगा आपके लिए सूद का, है तो कड़वा, है तो मीठा, है तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, पर खाना तो पड़ेगा। सीधी सी बात है, सूद हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया, अल्लाह ने मत। अब मेरी टोन बदली, आपके अंदर एकदम इर्तियाश आएगा कि नहीं भाई, नो वैकेंसी, कोई इसमें चेंज नहीं हो सकती। तो अपनी बात में वजन पैदा करें। वो एक हकायत कहीं पड़ी थी कि एक दरख्त था, तो उसके ऊपर एक बुलबुल बैठी हुई थी, और बुलबुल ने एक कंकर फेंका तो नीचे पानी में ऐसे इरताश पैदा हुआ, लहरें पैदा हुई। इस मंजर को देखकर जो दरख्त था उसको बड़ा अपने ऊपर आया, कहने लगा कि देखो इसने इतने बड़े दरिया में इरताश पैदा कर दिए, लहरें उठ गईं, तो मैं भी कुछ करता हूँ। तो उसने अपना पत्ता गिराया, पत्ता दरख्त से गिरा तो वो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई हरकत आई ना कुछ हुई, तो वो बड़ा मायूस हो गया। तो वो जो बुलबुल थी ना, उसने एक जुमला बोला, कहने लगी कि दूसरों को वही हिलाते हैं जिनके अपने अंदर वजन होता है। अब जिस पत्ते में खुद वजन नहीं है, जो खुद शेक हो रहा है, उसके ऊपर कहाँ इर्तियाश आएगा। फिर हम कहते हैं हमारी कोई मानता नहीं है, हमारी बात कोई नहीं मानता, हम कुड़ते हैं, हम जलते हैं, आपको मनवाना नहीं आता, आपके अंदर वो जज्बे नहीं है। आप देखिए कि ये तबलीग का मौजू इतना वाइड है। इत्तफाक देखिए, कल भी मैं इसी मौजू पे बोल के आई, इसलिए बहुत सारी बातें मेरे मुंह में खुद ही दोहराई भी आ रही हैं कि आज हमारा मसला ही ये है कि हमें खुद नहीं यकीन कि हम ये काम करवा सकते हैं। आपको यकीन है आपका बच्चा स्कूल के लिए उठेगा 9 बजे या 8 बजे? उठ जाता। आपको यकीन ही नहीं है कि आपका बच्चा 6 बजे उठेगा मस्जिद के लिए? उठता ही नहीं है। आपके शौहर जॉब पे जाना है, छोड़िए जॉब को छोड़िए, रात 4 बजे कोई एयरपोर्ट पे आ रहा है उनका क्लाइंट, तो उसको लेने पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? उसे अलार्म भी लगता है, उसे सब कुछ लगता है, उठ जाता है, यकीन लेके जाता है। यकीन मुहकम अमल पे हम जिहादे जिंदगानी में, ये है मर्दों की शमशीरें। तो आपको यकीन नहीं होता तो आप फजर के लिए आप उठाने की जरूरत ही नहीं करते, आपको खुद नहीं यकीन। सीधी सी बात है, जो हो शौक है यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आज ये शौक नहीं रहा, हम अपने इस्लाम पे, अपने मुसलमान होने पे इतने कमज़ोर हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ताला हमें नज़र भी आ जाए तो शायद हमें उस वक्त भी दूसरा ही लोग बड़े लगें। शौहर की बात पे हम नो नहीं कह सकते, रिश्तेदारों की बात पे नो नहीं कह सकते, बच्चों की बात पे हम नो नहीं कह सकते, क्योंकि वो नज़र आते हैं। तो हज़रत उम्मे सुलैम का ईमान देखिए, रिश्ता है। और हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होते हैं रिश्तों के मामले में? रिश्ता आया हुआ है उस मर्द का, अमीर मर्द है, खुद इंटरेस्टेड है, और आप देखिए ये बेवा भी हैं, बच्चे वाली हैं। ऐसे वक्तों में हम कहते हैं चुप कर जाओ, छोड़ो, बाद में देखेंगे नमाजें, जाओ जाओ, इसको कहाँ रिश्ता फिर मिलना है। हम अपनी ज़ात पे कॉम्प्रोमाइज़ करके फटाफट अगले को हाँ करना चाहते हैं, तो ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तू काफिर है, मैं नहीं कर सकती तेरे साथ शादी, इजाज़त नहीं। और आप देखिए जब उसका यकीन था, मान गया। अल्लाह अकबर, मुकामे अफसोस और दुख है कि आज के बाज़ मुसलमान गैरों के सामने अपने इस्लाम का इजहार करते हुए भी शर्माते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुसलमान होना बायस फ़ख्र है, बायस शर्म नहीं है। फिर इसी तरह एक और अमल की बात देखिए, हज़रत उम्मे सुलैम ने अपने तर्ज अमल से इस्लामी अकीदे यानी दोस्ती और दुश्मनी के लिए मेयार अकीदा है, इसका अमली सबूत पेश किया। उन्होंने अबू तलहा पर वाज़े कर दिया कि वह अपनी शान व अज़मत के बावजूद मुशरिक होने के बिना पर इनके लिए काबिले कबूल नहीं है, यानी अकीदे का इजहार। हम में से बहुत सारे अपने अकीदे का इजहार ही नहीं कर पाते, हालांकि उन्होंने क्लियरली करके बता दिया। तीसरी बात यह कि उम्मे सुलैम के दिल में दावत इस्लाम का जज्बा किस कदर शदीद था कि उन्होंने अबू तलहा के मुसलमान होने की सूरत में अपना हक महर छोड़ दिया। देखिए अगर अबू तलहा मुसलमान हुए तो क्या हज़रत उम्मे सुलैम पे कोई एहसान किया उन्होंने? एहसान तो नहीं किया ना, लेकिन वो अपना हक छोड़ रही हैं कि आपके मुसलमान होने को मैं अपने लिए एक एहसान समझती हूँ और मैं हक महर नहीं लूँगी। अच्छा, हमारे कल्चर में हक महर की कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस दौर की ये बातें, तो वहाँ हक महर एक बहुत बिग इशू होता था। तो फिर आप देखिए सारे वाक्य से क्या पता चला कि उनको यकीन था मुसलमान हो गए। या मैं अक्सर सिस्टर्स को जो बात कहती हूँ वो ज़रूर कहूँगी कि बाज़ दफ़ा जज्बाती मार देने से भी लोग सही हो जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों की मिसाल है कि अल्लाह ना करे किसी के घर में हराम आता है या उनकी कमाई दुरुस्त नहीं है, आप चुप करके बोल के नहीं क्या करें, जब माइंड करेंगे इनका दिल टूट जाएगा। 20 साल से उनके घर से खा पी रहे हैं, उनको किसने एहसास दिलाया? आप उनकी शादियों में भी जाते हैं, आप उनकी दावतों में भी जाते हैं, आप मौज मज़े करते हैं, हालांकि आपको पता है कि इनका बिजनेस ठीक नहीं है। आप एक दफ़ा कड़वा घूंड करें, सॉरी आए तो हैं, खाएंगे नहीं, खाना खा के आएंगे, अपना खाना साथ लाएंगे, किसी को नहीं हम बताएंगे, बस हम नहीं खाएंगे, हम अपना खाएंगे, हम रोज़ा रख के आएंगे आपके घर। एक दफ़ा सुनेंगे उनके अंदर कोई ना मलामत आएगी ना, दूसरी दफ़ा सुनेंगे हम कहेंगे कितने हम बदबخت हैं कि हमारे घर से ये नेक बंदा खाना नहीं खा रहा, तीसरी दफ़ा सोचेंगे क्या करना है मैंने इतनी बड़ी खाने को अगर मेरे अपने ही नहीं खा रहे। आप किसी का घर देखते हैं, आपको पता है कि उसने सूद पे लिया है, हराम कमाई से लिया है, खुद बोल रहे हैं, पीछे ना पड़े, खुद कोई बोल बोल के इजहार करता है, क्यों तारीफ़ करते हैं आप उसकी? आप देखते हैं एक दुल्हन सर से पांव तक गुनाह की तस्वीर बन के अपनी बेपर्दगी में दूसरों को दिखा रही है अपना आप, क्यों जाके उसकी तारीफ़ करते हैं, कितनी प्यारी लग रही है और गुड़िया लग रही है और चांद लग रही हो, क्या करना है ऐसे चांद और गुड़िया को जिस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत कर रहे हो? बात समझ रहे हैं ना, ये कड़वा टॉपिक है, बट ये कड़वी बातें हमारे प्यारे सुनेंगे, और हम मुँह से ना भी बोले ना, रवैया भी बहुत बड़ा होता है। यकीन करें ज़ुबान तो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए दावत में, अमल को अगर करके दिखा दें। बस आपका कोई प्यारा नमाज नहीं पढ़ता और आपका मूड बिगड़ा हुआ, अब वो सोच रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने पैसे भी दे दिए, मैंने खाना भी खा लिया, ये भी क्या, यानी घरों में यही कुछ होता है ना, भाई बहन को ही ले लीजिए, आपका मूड इसलिए बिगड़ा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप नमाज के वक्त को टाल गए हैं, इसलिए मैं आपसे खुश नहीं हूँ। आखिर सोचता है, हर बंदे को अकल है, बच्चे को भी सोच होती है कि माँ क्यों रूठी हुई है। बच्चा फौरन माँ के पीछे फिरना शुरू हो जाता है, ज़रा माँ मूड दिखाए। हम मूड नहीं दिखाते, दिखाएं आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ अल्लाह के हुक्म से कि वो ज़रा कमी बेशी देखे वो अपने रवैये से बता देते हैं कि अगले को फिक्र पड़ जाती है आज मैंने क्या गलत कर दिया जो ये चुप हो गया। समझ आ रही? इन जज्बाती चीज़ों से ताबत है। आपको अपने बच्चों के आगे बहुत नहीं बोलना पड़ेगा, शौहरों के आगे बहुत नहीं बोलना पड़ेगा, और वो भी बोले अपने रवैये से बताएं। खुशी ना हो आपके शौहर नमाज के लिए नहीं उठे, आप बस नाश्ता बना के रख दें, स्माइल नहीं होना चाहिए उस दिन चेहरे पे। क्या हुआ? खुद सोचें, खुद देखिए, कम बोलें, बाद में मैसेज कर दें, मुंह से कुछ ना बोलें, सुबह उठ के लड़ाई करके ना घर से भेजें। पर आपको तो यकीन हो कि ये गुनाह? हम कहते इट्स ओके। मैं कहती हूँ यकीन करें क़यामत के दिन ये बोल खोलेंगे कि हमने अपनों को खुद गुनाहों पर पक्का किया। ये पता लग जाए तो हम अपने रिश्तों को दुनिया में छोड़ने लग जाएं जैसे क़यामत के दिन लोग छोड़ेंगे। कुरान में आता है यौम यफ़िरुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अबी व साखिबतिही व बनी क्योंकि लिकुल इमरे मिनहुम यौम ज़िन शान युग्नी। सूरत अब्बस में जाके पढ़ लीजिए, तीसरी सूरत है 30वें पारे की, कि उस दिन आदमी भाग रहा होगा अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से, अपने शौहर से। क्यों? हर एक को अपनी बड़ी होगी, उस दिन ये सब सब के लाके ख़त्म हो जाएंगे। और ये हकीकत अगर आपको कुरान पढ़ के नहीं समझ आई ना तो सॉरी, ये कुरान आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, फिर आप कुछ और पढ़ें। अभी पूरा कुरान समंदर सीने में चला जाए और बंदे को ये ना पता चले कि किस वक्त यस कहना है और किस वक्त नो कहना है, किसको किस वक्त किस दर्जे से एंटरटेन करना है, फिर समझे कि मज़ा नहीं आया। फिर इसी तरह आगे देखिए, एक और खातून है, आपके दिल में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। जी आप।
एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते हैं कि ना तुम्हारी इबादत यही है कि तुम घर संभालो, बच्चे संभालो। उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी थी, ये तो नसरीन है जो मुझे यहाँ लेकर आई है। मतलब मैंने उनको कन्विंस किया, लेकिन अब कुछ हमारी फ्रेंड्स हैं जिनको हम लाना चाहते हैं, वो बस ये कहती हैं हमारे हस्बैंड ने नहीं परमिशन।
इस वक्त हस्बैंड घर में होते हैं? उनसे पूछिए कि आप हर जगह जहाँ भी जाती हैं अपने हस्बैंड से पूछ के जाती हैं, बता के जाती हैं। तो शौहर जब एक जनरल आज़ादी छुट्टी दे के चले चुके, वो सारा दिन वैसे भी नहीं पूछता कहाँ गई थी आई थी, आपसे जब पूछता कोई नहीं तो आप बताएं भी ना। आप देखिए सिंपल सी बात है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। मिसाल है कि अगर हम सारी हर वक्त इजाज़त ले के ही जाते हैं ना, सब्ज़ी लेने गए तो किधर गए, तो फिर इसकी भी ले लीजिए। अरे हर शौहरों ने एक खामोश इजाज़त दी होती है ना। कई शौहर ये कहते हैं मैं घर में हूँ तो तुम घर में हो, कई खवातीन हैं हमारे बाहर के मुल्कों में तो अक्सर ऐसी हैं, वो कहती हैं मियाँ कहते हैं सारा दिन जो मर्जी करो जब मैं घर हूँ तो घर हो। बहुत अच्छी बात है, ये मियाँ का हक है, आप मियाँ के आने के वक्त पे घर पे हो। अब दिन में आप बाजारों में थके खाएं, मॉलों में जाएं, सब्जियां लें, पार्लरों पे जाएं, माइंड ना करिएगा, पार्लर के नाम पे माइंड ना करिएगा कह रही हूँ। दो दो तीन तीन घंटे लोग आके बैठ जाते हैं, कोई नहीं कुछ कहता, लोगों ने सब माना हुआ है। तो जहाँ दीन की बात है तो क्या मैं चली जाऊँ? अच्छा ना ही कर दें तो अच्छा, ताकि मैं कह दूँ। ये अंदर की कन्विक्शन की बात है। आप उन्हें क्या, आप घर से फ़ोन पे सुनना शुरू हो जाए, आप दिल दिमाग इधर लाएं, अल्लाह रास्ते की मुश्किलें हल करेगा। और याद रखिए एक बात लिख के रख लें, जब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता है ना, किसी मखलूक को आपके ऊपर मुसल्लत कर देता है। अब तो बच्चे नहीं इजाज़त देते, आप शौहर की बात करते हैं। बाज़ औरतें सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनके बच्चे नहीं पसंद करते, नहीं मामा फिर आप टू मच हो जाती हैं, मामा फिर आप ये नहीं है, मामा फिर मुझे चिप्स कौन बना के देगा तो मैं नहीं आ सकती। और बात तो माशाल्लाह हमारी सिस्टर्स ऐसी भी हैं जिनकी मेड्स नहीं उनको इजाज़त देती। हमारा हाल तो ये है, यानी सिर्फ ये काम रह गया जिस पे हमें इजाज़त की ज़रूरत है, प्यार से मोहब्बत से। आप उनको घर से व्हाट्सएप की क्लासेस में डालें, वो सुने तो सही, उनके कान इस चीज़ को इंजॉय तो करें। जिस दिन वो शौक आ गया फिर खुद ही आएंगे। आज भी देखिए घरों में VCR है, नेट है, सब है, फिर भी सिनेमा घरों में लोग फिल्म देखने जाते हैं। क्यों? माहौल का असर होता है। आप मैं ये सारी बातें बाद में जितना मर्जी बैठ के पढ़ें सुनें, व्हाट्सएप पे ऐप से पढ़ेंगे, बट जो इस वक्त आप इस माहौल का हिस्सा बन के सुन रहे हैं ये मज़ा आपको नहीं आएगा, ये हकीकत है। तो इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। जी आप।
इसी के जवाब में अभी हमने एक हदीस का तर्जमा पढ़ा है, मखलूक की जिस बात के मानने में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो इस पर अमल ना।
ला तात अली मखलूक इन फी मासियतिल खालिक। लेकिन याद रखिए ये शोहर बीवी का रिश्ता जो है ना, ये चिड़ का रिश्ता नहीं होना चाहिए। चिड़ चढ़ जाती है ना तो अगला कहता है बस मैंने कह दिया, बिकॉज आई टोल्ड, बिकॉज आई से, मैंने कह दिया। भाई आपने कह दिया, दैट मीन रिश्ते में गड़बड़ है। आप इतनी अच्छी उनके साथ बन जाएं कि वो उनको लगे, आप जिस दिन क्लास से जाएं उस दिन जाके इतना अच्छा खाना बनाएं, इतना अच्छा घर साफ हो, फ्रेश करें। क्या हुआ बेगम? आज क्लास में गई थी। फिर क्लास में जाती है तो इसका मूड भी अच्छा होता है, आप खुश रहें उस दिन। रियली ऐसी टिप्स हैं। मर्दों ने कहा कि तुम जाओ, तुम स्कूल जाती हो तो ठीक रहती हो, और जिस दिन तुम छुट्टी करती हो उस दिन तो मेरे सर पे सवार रहती हो, तुम जाओ। रियली ऐसी मिसालें ज्यादा हैं उन मिसालों की नस्बत। अपना फायदा, अपना फायदा। मैं सोचती हूँ कि हम कहते हम सोएंगे तो हम फ्रेश होंगे, वल्ला ही ज्यादा सोने से हम डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। नॉर्वे में तकरीबन हर चौथी पांचवी लड़की डिप्रेशन में चली जाती है बच्चे की डिलीवरी के बाद। आई डोंट नो वाई, बहुत आम है। अक्सर हमारे अपने साथियों में बेबी को डिलीवर करने के बाद माएँ स्ट्रेस में चली जाती हैं। ऐसी एक सिस्टर से उनसे बात हो रही थी, मैंने उन्हें कहा आप हिम्मत करके आ जाएं, 3 4 दिन 5 दिन चले 1 हफ्ता 10 दिन का बच्चा लेके आ गई। जब स्कूल में आई तो ठीक हो गई, घर में कहती सोना बैठना, बच्चे के तो खुद भी सोती रहती थी, अंधेरा कर दिया, डिप्रेस हो गई। वजह क्या थी कि वो अब नॉर्मेलिटी थी कुछ। वैसे भी औरत नमाज रोजे से दूर होती है, कई एक बहुत सारे एक ट्रॉमा से गुजरी होती है ना, तो ये सारे फैक्टर्स जमा होते हैं। अगर उसमें आप कुरान और अपने इबादत और तिलावत के साथ जुड़े रहें, नमाज और दुआओं के साथ, नमाज ना भी पढ़ सकें तो दुआओं के साथ जुड़े रहें, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर खुद ब खुद एक कुव्वत आएगी। हम जिन चीज़ों की बुनियाद, ये जुमला लिख लें, हम जिन चीज़ों को बुनियाद बनाकर कुरान से रुकते हैं ना, असल में वो इलाज होता है हमारा। शैतान हमें नहीं आने देता। आप यकीन करें सबसे ज़्यादा खुश दिल उस बंदे का होगा जो ज़्यादा वो कुरान के साथ गुजारता है। सोता है नहीं सोता ज़्यादा, खाता है नहीं खाता ज़्यादा, फ्रेश रहता है कि नहीं रहता, इनर्जेटिक लेवल है नहीं उसमें, विटामिन डी है कि नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर है, नथिंग इज़ लाइक दिस कुरान। ये आपका टोनर भी है, ये आपका एंटीसेप्टिक भी है, ये चीज़ आपको ज़िंदा रखती है। और आप देखिए हमारे असलाफ ऐसे ही थे, पहली माओं की ज़ुबानों पे कुरान रहता था, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। उनकी ज़िंदगी में कुरान ऐसे नहीं था जैसे हम है कि कुरान भी पढ़ लें और साथ दूसरी बातें भी करते रहें। उनको समझ भी आता था, उनको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। हम मॉरली और फिज़िकली डिक्लाइन जब हुए ना, उसकी वजह पीछे स्पिरिचुअलिटी थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे, फ़ायदा अपना। आप देखिए अगर आप में से हो सकता है इस वक्त भी कोई घर में होता, हो सकता है मैं भी ऐसी होती तो आई थिंक सो, या हम बिस्तर पे होते, हमने कंघी करनी थी अभी तक, वो चुड़ैलों वाला शक्ल बना के हम घर वालों को डरा रहे होते हैं। कोई चाय का कप लेके बैठता, कोई अखबार लेके बैठता, कोई व्हाट्सएप को चेक कर रहा है, कोई मैसेजेस चेक कर रहा है, क्या यहाँ आके हम फ्रेश नहीं हो गए, हम रिलैक्स नहीं हो, क्या हम शावर लेके नहीं आए? हम तो खुद ब खुद खुश रहते हैं। क्यों खुश रहेंगे? क्योंकि हमने अपने पास से वो सारी नजास्तें दूर कर दी। तो फ़ायदा आपका अपना है, कोई किसी का फ़ायदा कम होगा, आप किसी को तो बाद में देंगे, आपको पहले सबसे खुद मिल जाएगा। ठीक है, एक और वाक़ा पढ़ते हैं। आज सारे शोहरों के वाक़ात आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मज़े से हमारा ये कि अमली गाइडलाइन मिल रही है ना। चलो जी, उम्मे हकीम रदी अल्लाह अन्हा का शोहर को दावत इस्लाम देना। अबू जाहल की बहू उम्मे हकीम, हैरत हुई सुन के, अबू जाहल की बहू उम्मे हकीम। हकीम क्या होता है? हिकमत। जाहल क्या है? अपोजिट है हिकमत का। फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान हो गई। इनके शौहर इकरमा रदी अल्लाह अन्हो इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में इंतहाई सरगर्म और पेश पेश थे। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कत्ल का हुक्म दे रखा था। हज़रत उम्मे हकीम ने रसूलुल्लाह से अपने शौहर के लिए अमान हासिल की और इनको वापस लाने की खातिर इनके पीछे गईं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने की दावत दी। वो मुसलसल दावत देती रहीं यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनकी मुराद को पूरा कर दिया। आइए वाक़ा सुनते हैं। हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने ये इनका वाक़ा इन अल्फाज में दिया। वो फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खावन इकरमा के लिए अमान तलब की, जो कि यमन की तरफ फरार हो गया था। वो इसकी तलाश में निकली यहाँ तक कि वो इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँची और वो मुसलमान हो गए और दोनों का साबिका निकाह बरकरार रहा। हज़रत उम्मे हकीम ने शौहर को जिस अंदाज़ से नबी करीम की खिदमत में हाजिर होने और इस्लाम कबूल करने की दावत दी, इसका जिक्र बाज़ रिवायात में है। उन्हीं में से एक रिवायत में है, उन्होंने इकरमा से कहा, जे तु कमिन दी अवसल नासी व अबर नासी व खैर नासी ला तुखलिक नफसक, मैं आपके यहाँ एक ऐसे शख्स के पास से आई हूँ जो कि तमाम लोगों में से सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले, सबसे ज़्यादा नेकी करने वाले और सबसे बेहतर इंसान है। आप अपने आप को हलाकत में ना डालिए। एक दूसरी रिवायत में है, वो क्या कहती हैं, जब वो इनके पास पहुँची तो वो कश्ती में सवार हो चुके थे। वो इन अल्फाज में इनसे मुखातिब हुई, ए मेरे चचा के बेटे। क्या वो चचा के बेटे ही थे अभी तक? क्या थे वो? शौहर भी थे, लेकिन उनको पुराने रिश्ते की मान, क्योंकि हो सकता है वो कहती हो मेरे शौहर तो माइंड कर जाते। मेरे पास रसूलुल्लाह का अता करदा अमान है, अगर आप मुसलमान हो जाएं और रसूल अल्लाह के अमान को कबूल कर लें तो मैं आपकी बीवी हूँ, और बसूरते दीगर मेरा और आपका ताल्लुक टूट चुका है। ये थी हिकमत। चचा का बेटा ये कह दिया कि अगर बात नहीं मानोगे तो फिर चचा के बेटे ही बन जाओगे। कितनी जरूरत की बात है, समझ आई ये बात? यानी अपने जहन से वो कह चुकी हैं कि अब इस वक्त तुम्हारा मेरा रिश्ता टूटा हुआ है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, तुम कुफर पे हो। कितनी बड़ी जंग है आज, यकीन करें दसियों सिस्टर्स को तो मैं भी जानती हूँ, दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टू इस्लाम, पूरा पढ़ रही हैं, सीख चुकी हैं, आती हैं जाती हैं। अंदर की रुकावट असल में ये है कि शौहर छूट जाएगा और शौहर अभी कन्विंस नहीं है। चले हम दोनों साथ ही मुसलमान होंगे, पता नहीं अब वो साथ ही मुसलमान होते हैं या कुछ और होता है, तो लेकिन जुरत की बात है कहा कि मेरा आपका ताल्लुक टूट गया। अब ये यकीन था इस औरत का कि जो इनके शौहर को इस्लाम पे ले आया, आप कह के तो देखें अपने शौहर को यकीन के साथ, ऐसी बात नमाज की बात है या हराम हलाल के फ़र्क की बात है, ठीक हो जाएंगे। हमें ठीक करना नहीं आता लोगों को, इसलिए फिर लोग कहते हैं चलो अब जो कर रहे हैं वही करते रहें। एक और रिवायत में क्या है, इकरमा अपनी बीवी को इज़दवाजी ताल्लुकात के लिए बुलाता रहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा आप काफिर हैं और मैं मुसलमान औरत हूँ। यानी मर तो वही था ना जो पहले था, तो बीवी मुसलमान हुई है और शौहर के तकाजे वही थे लेकिन इन्होंने उनके नहीं माने क्योंकि शरण जायज़ ही नहीं रहता ताल्लुक जब इस तरह के हालात हो जाए। फ़ायदे की बातें देखिएगा, पहली बात क्या कि उम्मे हकीम के दिल में अपने शौहर के इस्लाम के बारे में शदीद तड़प और पुरजोर जज्बा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके लिए अमान हासिल करना, इनको वापस लाने की खातिर इनके पीछे जाना, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सिला रहमी और शफ़क़त व नवाजिश का अपने शौहर के सामने जिक्र करना, इस्लाम को कबूल ना करने की सूरत में शौहर से क़त्अ ताल्लुकी की धमकी देना, इन सब बातों में शौहर के इस्लाम के मतलब इनका जज्बा सादिका और सच्ची तड़प उजागर है। यानी सच्चा जज्बा था ना कि ये मुसलमान हो जाएं तभी इतना कुछ किया, वरना तो आप देखिए कि वो भी ढीली हो जाती। चलो भाई जैसे भी हो रहो हम साथ ही रहेंगे, ऐसी भी सिस्टर्स को मैं जानती हूँ, खुद कलमा पढ़ चुकी हैं लेकिन मियाँ ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो उनको नहीं छोड़ सकती, बस वो कहती हैं मुझे मना नहीं करते जो भी है, तो बहरहाल उनके हक़ में जो भी फैसला है वो हम नहीं कुछ बात कहते, लेकिन ये है कि ये बड़ी जुरत की बात होती है कि दूसरे को अपने साथ लेकर चलना। फिर अगली बात क्या कि इस वाक़े में उम्मे हकीम ने अलहब्बु फिल्लाह वल बुख्ज़ु फिल्लाह की सच्ची तस्वीर पेश की। इनका अपने शौहर से ये कहना कि अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मैं आपकी बीवी हूँ, वरना मेरा और आपका रिश्ता मुनक़ते हो चुका, इस हकीकत पर वाज़े दलालत है। ये आयत तो रट लीजिए, कुरान पाक में आता है सूरत मुजादिला की आयत 22 है, 22, ला तजीदु कौमन युमिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिरी युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सुनने के लायक आयत है और वाकई गौरव तलब वाली खूबसूरत आयत है, तर्जमा सुनिएगा। जो लोग अल्लाह ताला और यौम आखरत पर ईमान रखते हैं इन्हें आप इन लोगों से मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे जो अल्लाह ताला और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं। ज़रा सोचिए चंद सेकंड, यानी अल्लाह ताला कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता क्या कि ऐसे लोग जो अल्लाह और आखरत पर ईमान ले आएँ वो उन लोगों से मोहब्बत करें जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। ज़रा लिखिए रिश्तेदारों के नाम, दोस्तों के नाम, ख़ानदान के नाम, सरीहन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुखालफत होती है, तो क्या फिर हम इस मेयार पे पूरे उतरते हैं? फिर भी हमारी मोहब्बतें उनके साथ, और झूठी मोहब्बतें, ये ऊपर का प्यार होता है, ये सच्चा प्यार नहीं है कि आप किसी का आके मुंह चूम ले और हाथ चूम ले और उसको उसकी बुराई पे ना टोके, या तो फिर उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये बात बुरी है। यही बात है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ये मुमकिन इल्ला, ये आप देखिए अगर अरबी के लफ्ज़ देखें ना तो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, इसी तरह या शुरू हुई है ला तजीदु, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, कौम युमिनून बिल्लाहिल आखिर। तो हम सबको अपने ईमान को चेक करना है, यकीन करें दीमक लगा हुआ ईमान तो नहीं है, कहीं पता चला अंदर रखे हुए कीड़े ही खा गए ईमान को, क्योंकि जब हम बहुत सारी बुराइयाँ देख रहे होते हैं तो हमें फिर वो बुराई बुराई नहीं लगती। कौन? चाहे वो इनके बाप हों, नोट करें, अपना बाप भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे तो ला तजीदु, मैं कोई मोहब्बत नहीं आपसे महसूस करती क्योंकि आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, या बेटे हों या इनके भाई हों या इनके कुंबे वाले, इन्हीं लोगों के दिलों में अल्लाह ने ईमान को रासिख कर दिया है और इनकी ताईद अपनी नुसरत ख़ास से की है। अल्लाह हमें ये जुरत दे दे, सहाबा में यही जुरत थी। इसमें से एक और बात पता चलती है कि उम्मे हकीम को इस बात का शिद्दत से यकीन था कि इस्लाम बायस इज़्ज़त व इफ्तिखार है, इस्लाम कबूल करने वाले शर्मिंदा नहीं हो सकते, पर्दा करने वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए, दाढ़ी रखने वाले मर्दों को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, और निकाबी हिजाबी और जो भी इस्लाम का रिचुअल लगा लीजिए उन कामों को करने वालों को यकीन होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे हैं, हमें इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। दारे इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुसलमान औरत किस कदर बुलंद हो जाती है कि साबिका गैर मुस्लिम शौहर को शिर्क पर कायम रहने की सूरत में इसके करीब फटकने की इजाज़त भी नहीं दे सकती। एक औरत के लिए भी तो ये कड़ी आजमाइश है ना। फिर शौहर के बुलाने के बावजूद इससे दूर रहने में उम्मे हकीम के दीन में इस्तकामत वाज़े और नुमाया है। जुरत है ना, जुरत की बात है, लेकिन असल में देखिए कि इन सारी चीज़ों में हिकमत बहुत ज़रूरी होती है, तरीके से बात करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए अभी तक जितने वाक़ियात है इसमें मोस्ट लाइकली शौहर और पहले शुरू के वाक़े में बच्चे का जिक्र था।